So first question is, can husband and wife correct each other? Can husband and wife correct each other? Michelle.
You are hearing me well?
यस
Okay.
क्या पति पत्नी एक दूसरे का सुधार कर सकते हैं, किसी और की एक दूसरे की गलतियों को दिखा सकते हैं?
We all will admit that there are areas in our own life that we ourselves cannot see.
हम सब ये चीज इस बात को मान सकते हैं कि हमारे जीवन के ऐसे क्षेत्र हैं जो हम खुद देख नहीं सकते.
For example, some of the areas in my life, I may not be having light. My wife can probably easily see those. Michelle, you heard?
Can you repeat, Uncle?
Yes. For example, some areas of my life, I myself may not be seeing, but my wife may be able to see those things where I need to improve.
इस उदाहरण स्वरूप मेरे जीवन के ऐसे कुछ क्षेत्र हो सकते हैं जिनमें मैं खुद तो उन चीजों को देख नहीं पाता, पर मेरी पत्नी उन चीजों को देख सकती है कहां मेरे जीवन में सुधार की कमी है.
It is like looking at a mirror.
ये एक आईना देखने के समान है.
So family is the best place where we can receive help from one another.
और परिवार ये सर्वोत्तम जगह है जहां हम एक दूसरे से मदद को प्राप्त कर सकते हैं.
In a spirit of helping each other.
एक दूसरे को मदद करने के आत्मा में.
So an answer as answer to the question, in a spirit of helping each other, yes, the husband and wife can correct each other.
और उस प्रश्न का जवाब यह है कि अगर एक दूसरे को मदद करने की भावना हो तो उस आत्मा में हाँ, एक पति या पत्नी एक दूसरे को सुधार कर सकते हैं.
Of course, correction should not be given in a spirit of fault finding and accusing.
किसी का भी सुधार या किसी को भी गलती दिखाना वो कभी भी एक ऐसे आत्मा में नहीं होना चाहिए कि हम एक दूसरे पर दोष लगा रहे हैं या एक दूसरे की कमियां दिखा रहे हैं.
That correction should be given with the pure intention of helping the other person.
वो सुधार सिर्फ इस हेतु से होना चाहिए कि हम सामने वाले की मदद करना चाहते हैं.
So in that setting, it is likely that correction also will be well received by the other person.
अगर इस भावना से सुधार किया जाए तो सामने वाला व्यक्ति भी उस सुधार को ग्रहण करेगा.
And I also think a godly husband or wife will also thank his wife or her husband for correcting her or him.
पति और दैवी पत्नी अपने पति पत्नी को धन्यवाद देंगे उन्होंने जो सुधार प्राप्त किया है उसके लिए.
So what I mean is the correction offered by our partner, life partner, we can gratefully receive.
और मेरा कहने का ये मतलब है कि हमारे जो जीवन साथी ने जो कोई हमें सुधार किया है उसको हम कृतज्ञता से उनको धन्यवाद के साथ उसको हम स्वीकार कर सकते हैं.
Because that is the best way how we can improve in some areas of our life, receive correction from our husband or wife at home.
क्योंकि हम उस सुधार को प्राप्त करके हमारे पति पत्नी से उस सुधार को प्राप्त करके हमारे जीवन के क्षेत्र में सुधार ला सकते हैं.
दूसरा सेकेंड क्वेश्चन इज, इज इट राइट टू रेज आवर वॉइसेस टू करेक्ट आवर चिल्ड्रन?
और दूसरा प्रश्न ये है, हमारे बच्चों का जब हम सुधार करते हैं तब क्या ऊंची आवाज में बात करना सही है?
We know children are often distracted or engrossed in many activities.
हम जानते हैं कि बच्चे हमेशा अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं, अपने ही दुनिया में खोए हुए होते हैं.
So to receive their attention, sometime it may be necessary to raise our voice.
इसलिए कभी कभी उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमारा आवाज उठाने की कभी हमें जरूरत पड़ सकती है.
So raising voice in itself is not a wrong thing.
और इसलिए अपने आप में अपना आवाज उठाना ये कोई गलत बात नहीं है.
But at the same time, we should check inside us, is there a simmering anger or there is irritation?
पर उसी समय हमें खुद को जांचना है, खुद को परखना है, क्या जब हमने आवाज उठाया तब हमारे अंदर कोई उबलता हुआ गुस्सा था या चिड़चिड़ापन था?
We have to work in that area and overcome our anger and irritation.
हमें उस क्षेत्र में काम करके अपने आप का जो गुस्सा है उसे सुधारना है और हमारे चिड़चिड़ेपन से हमें विजय पाना है.
So anger and irritation are sinful things over which we should ask God for grace, work in that area and overcome.
क्रोध और चिड़चिड़ करना ये ऐसे क्षेत्र है जो पाप है और हमें परमेश्वर से कृपा मांगनी है और इन क्षेत्रों में विजय पाना है.
So raising the voice to receive attention from a child is not wrong, but at the same time, we as parents should work in our area, in our inside, on anger and irritation.
और इसलिए अपने बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवाज उठाने में कोई भी गलत बात नहीं है. उसी समय हमारे जीवन के गुस्सा करना और चिड़चिड़ेपन के क्षेत्रों में हमें काम करके उस पर विजय पाना है.
Yep. Next question is, Bible says live in an understanding way with your wife in 1 Peter 3:7. What does it mean?
Bible सिखाती है कि अपने पति पत्नी के साथ अपने पत्नी के साथ एक समझदारी से रहना है. उसका क्या मतलब है?
I'll just read that full verse, 1 Peter chapter 3 verse 7.
तीसरा अध्याय और उसका सातवां वचन.
You husbands, in the same way, live with your wives in an understanding way, as with someone weaker, since she is a woman, and show her honor as a fellow heir of the grace of life, so that your prayers will not be hindered.
पहला पत्रस उसका तीसरा अध्याय और सातवां वचन. वैसे ही है पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए.
So in this passage, two things are written about the wives.
और इस शास्त्र भाग में पत्नियों के बारे में दो चीजें लिखी गई है.
One thing is, wife is a weaker vessel.
एक तो यह है कि जो पत्नी है वो निर्बल पात्र है.
It need not be necessarily just a physical weakness.
ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ शारीरिक निर्बलता है.
Women are generally sensitive and they are tender.
स्त्रियां आमतौर पर संवेदनशील होती है.
Sensitive and tender.
Tender, I'm not sure how to express in Hindi.
Komal, komal.
Komal, komal hoti hai. Thank you.
Yeah, God has made them in this way so that they can deal with small children.
Parmeshwar ne unhe is swaroop mein isliye banaya hai taki ve chote bachchon ke saath reh paaye, vyavahar kar sake.
So it's a very helpful thought to understand that.
और ये समझना बहुत ही एक अच्छी बात है.
God has made women tender and sensitive and delicate so that they can easily manage very delicate and small children.
और ये हमें याद रखना है कि परमेश्वर ने स्त्रियों को संवेदनशील बनाया है, कोमल बनाया है, ताकि वो छोटे बच्चों के साथ व्यवहार कर सके.
So this God-given weakness is actually an asset.
और इसलिए ये निर्बलता जो परमेश्वर ने दी हुई है, सही तौर पर देखा जाए तो उनके लिए एक मूल्यवान चीज है.
this is you know complementary to the to man's character, which is a kind of tough and strictness.
मनुष्य का जो स्वभाव होता है, जो पुरुष का स्वभाव होता है, वो स्ट्रिक्ट होता है और
टफ
कठिन कठोर
कठिन मे बी
ये उसके विपरीत है, या ये उसको स्त्रियों का स्वभाव उसी को मदद कर सकता है.
या सो वी शुड बी ग्रेटफुल to know that our wives have some complementary characters given by God with a purpose.
और इसलिए हमें इस बात को परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे पत्नियों को एक ऐसा स्वभाव दिया है जो हमारे पास नहीं है, और उसने ये एक उद्देश्य के साथ ऐसा स्वभाव उन्हें दिया है.
So when you understand that, it is very helpful, a kind of balance in the family.
अगर हम इस बात को समझ जाते हैं तो ये हमारे परिवारों में एक बहुत ही मदद करेगा एक बैलेंस लाने के लिए.
सेकंड थिंग इज आवर वाइव्स आर एन इक्वल पार्टनर इन द फैमिली.
और दूसरी बात ये है कि परिवार में हमारी जो पत्नी है वो एक
इक्वल पार्टनर
समांतर सहयोगी
वो समांतर सहयोगी है.
We should understand that wife is not inferior in any way to the husband.
हमें ये समझना है कि पत्नी किसी भी तरीके से पति से कम नहीं है.
When you understand that, it is easy for us to give them honor which they deserve.
अगर हम इस बात को समझ जाते हैं तो हम उनको आसानी से आदर दे पाएंगे क्योंकि वे आदर के योग्य है.
So that is what that scriptural scripture passage teaches.
और उस वचन में यही सिखाया गया है.
Giving them honor.
कि हम उन्हें आदर करें, उनका आदर करें.
So I think living with your wife in an understanding way means.
और इसलिए बुद्धिमानी से या समझदारी से अपने पत्नी के साथ जीवन निर्वाह करने का ये अर्थ है.
We understand her God-given role.
और जो परमेश्वर ने जो कोई उनको एक जिम्मेदारी दी है, एक भूमिका दी है, उसको हम समझते हैं.
Especially, God has made her as a weaker vessel.
विशेष तौर पर ये बात कि परमेश्वर ने उसे एक निर्बल पात्र बनाया है.
Weaker vessel means being tender, delicate, and sensitive.
और निर्बल पात्र बल है और वो नाजुक है.
And that is with a purpose.
और
मिशेल यू आर हियरिंग?
या वो एक उद्देश्य के साथ है.
एंड द सेकंड थिंग इज
और दूसरी बात ये है
wife is an equal partner deserving to be honored.
और पत्नी जो है वो एक समांतर एक समान जो है सहयोगी है ताकि जिससे उसका आदर किया जाए.
So that is how we can live with our wives with an understanding way.
और उसी प्रकार हम पत्नियों के साथ बुद्धिमानी या समझदारी के साथ हम जीवन जी सकते हैं.
We should also remember that our prayers are answered on this basis.
और हमको ये भी याद रखना जरूरी है कि हमारी प्रार्थनाएं जो इस पर आधारित ही वो उत्तर दी जाती है. द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ टू डेवलप स्पिरिचुअल इंटरेस्ट इन चिल्ड्रन एंड टीच देम द वर्ड ऑफ गॉड. शेल यू आर देयर?
यस. और आखिरी प्रश्न ये है कि बच्चों में एक आत्मिक चीजों की रुचि कैसे हम बढ़ा सकते हैं, कैसे उन्हें परमेश्वर के वचन को सिखा सकते हैं.
The first thing what we should remember is God is expecting us all to do our best within our circumstances.
सबसे पहली चीज हमें समझना ये है कि परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा करता है कि हमारे परिस्थिति में हम जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वो उसे हमसे वो उसकी अपेक्षा कर रहा है.
God accepts as parents our best efforts to bring up our children in a godly manner.
हम माता पिता के तौर पर जो हम अच्छे से मेहनत करते हैं हमारे बच्चों को एक दैवी जीवन में बढ़ाने के लिए, परमेश्वर उसका स्वीकार करता है.
So we should never feel condemned in comparing one family with another.
और इसलिए हमें कभी भी खुद को दोष नहीं देना है, और क्योंकि जब हम अपने परिवार को किसी और परिवार के साथ जब हम उसकी तुलना करते हैं.
I want to share a few principles which came to my heart.
कुछ तत्वों को मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा.
First of all, parents, especially the father, should represent God correctly in the family.
और सबसे पहली चीज ये है कि पिता जो माता पिता है और विशेष करके जो पिता है उनको परमेश्वर को अपने परिवारों में परमेश्वर के एक रिप्रेजेंटेटिव
प्रदर्शित करना है.
प्रदर्शित करना है. थैंक यू.
सो व्हाट डज दैट मीन?
और उसका क्या मतलब है?
बाय सीइंग द पेरेंट्स और सीइंग फादर, चिल्ड्रन शुड गेट अ टेस्ट ऑफ गॉड्स नेचर.
बच्चे जब उनके माता पिता को देखते हैं और विशेषकर जब वो उनके पिता को देखते हैं तो उनको परमेश्वर के स्वभाव जैसा एक महसूस होना चाहिए.
For example, we should show an unconditional love to our children.
उदाहरण के तौर पर हमें हमारे बच्चों के लिए हमेशा एक किसी भी बिना शर्त के एक प्रेम दिखाना है.
We should show forgiveness.
हमें हमारे बच्चों को क्षमा करना है.
We should show God's patience.
परमेश्वर जैसा हमारे साथ patience.
धीरज
दिखाता है, वैसा हमें भी उनके साथ धीरज रखना है.
Yeah, and more than anything, we should be honest and truthful before our children.
और सबसे ज्यादा मतलब हमें हमारे बच्चों के सामने हमेशा सच्चाई से पेश आना है.
We should not give the impression that parents are perfect people.
हमें कभी भी उन्हें ऐसा नहीं दिखाना है कि माता पिता जो होते हैं वो पूरी तरीके से परिपूर्ण है.
More than anything, children should know that parents are truthful and honest.
बच्चों को सबसे ज्यादा ये जानना जरूरी है कि उनके माता पिता सच्चाई से पेश आते हैं.
One thing we can remember and encourage ourselves is Jesus is not a boring person.
एक चीज जो हमें याद रखनी है और जिससे हम प्रोत्साहन पा सकते हैं वो ये है कि यीशु मसीह कोई भी एक बोरिंग व्यक्ति नहीं है.
In the same way, Bible is not a boring book.
और उस समान बाइबल भी जो है वो एक बोरिंग किताब नहीं है.
So that is something which we can keep in our heart when we deal with the children.
और जब हम बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं तब हमें ये चीज को याद रखना है.
We should try to avoid presenting God as a boring person and the scripture as a boring book.
कभी भी हमें परमेश्वर और बाइबल को बच्चों के सामने ऐसे तौर पर पेश नहीं करना है कि वो एक बोर चीज है.
And we should avoid being too much legalistic.
और हमें बहुत ज्यादा नियमों के साथ रहना भी हमें वैसा नहीं रहना चाहिए.
I heard an example. One child, when he was admitted to school first time in his life, when the teacher asked his name, he said, "What is your name?" He said, "My name is Johnny Dond."
और मैंने इसका उदाहरण सुना जब एक बच्चे का पहले बार उसके स्कूल में दाखिला हुआ तब उसके शिक्षक ने उससे कि उत्तर दिया कि मेरा नाम है जॉनी, ये नहीं करना.
Because parents always tell him Johnny Dond, Johnny Dond, Johnny Dond. He was so used to this Dond, and he confused that his name itself is Johnny Dond.
और उसके माता पिता हमेशा उससे कहते थे कि जॉनी ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, कि आखिर में उसे लगा कि उसका पूरा नाम यही है कि जॉनी नहीं करना.
Meaning it, we should be very clear what they can do and that what they cannot do.
इसका मतलब ये है कि हमें बहुत ही स्पष्ट होना है कि वो क्या चीजें कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते.
एंड वी शुड ऑल्सो ट्राई टू यूज वेरी हाई रिलीजियस लैंग्वेज एट होम.
सॉरी, वी शुड नॉट.
We should try to avoid using very religious language at home because children will get confused.
और हमें हमारे घर में बच्चों से बात करते वक्त बहुत ही ज्यादा धार्मिक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं.
Our interest should be in developing them in Christian character, not religiosity.
हमारी हृदय की इच्छा ये होनी चाहिए कि हम उनको एक मसीही स्वभाव दे सके, कोई एक धर्म नहीं सिखाना चाहिए.
Many parents, we almost made mistakes in this area.
कई माता पिता ने इन क्षेत्रों में हम सब ने गलतियां की है.
Emphasizing, encouraging the outer things in children's life than their inner character.
कि हमने कई बार बच्चों में उनकी जो बाहरी तौर पे जो उनका जीवन है और जो चीजें हैं उन्हीं चीजों पर हमने जोर डाला, ना कि उनके अंदरूनी स्वभाव के ऊपर.
Including things like pushing them to take water baptism when they are very young, when they are before they understand, such a thing many parents make mistakes. And
इसमें ये भी एक बात है कि कई माता-पिता एक गलती कर बैठते हैं कि वो अपने बच्चों को उनके समझने से पहले ही पानी से बपतिस्मा लेने के लिए उनके पीछे पड़ते हैं.
So it is better to focus on the actual the life of Jesus inside than external things.
और इसलिए यीशु मसीह का स्वभाव और जीवन उनके अंदर आए, इस पर हमारा ज्यादा ध्यान होना चाहिए, बाहरी चीजों से भी ज्यादा.
One suggestion is it is good to have very brief family prayer when children are also present.
एक सुझाव ये है कि जब कभी बच्चे उपस्थित हो तो हमारी पारिवारिक प्रार्थना बहुत ही छोटी होनी चाहिए.
And husband and wife of course can take time together separately for prayer or Bible study, but when children are there, better to minimize the time.
और जब पति पत्नी है वो बाद में अलग से अपने आप प्रार्थना और वचन की पढ़ाई कर सकते हैं, पर जब बच्चे हैं तब प्रार्थना का समय कम रखिए.
And we should also remember that all children are different.
और हमें ये भी याद रखना है कि सारे बच्चे अलग हैं.
We should never compare their intelligence or ability to memorize verses etc.
हमारे बच्चों की जो बुद्धिमत्ता है, हमारे बच्चों की जो याद करने की, वचन याद करने की क्षमता है, हमें कभी भी उनकी तुलना किसी और के साथ नहीं करनी है.
Such abilities can vary from children to children.
क्योंकि ये जो क्षमताएं हैं ये अलग अलग बच्चों में अलग अलग मात्रा में पाई जाती है.
We should never compare our children and blame them compared with someone else's children.
हमें कभी भी हमारे बच्चों की किसी और के बच्चों के साथ तुलना करके उन्हें डांटना नहीं है.
That they hate and it will only drive them away.
क्योंकि इस बात अगर हमने ऐसा किया तो वो घृणा करेंगे और वो दूर चले जाएंगे.
We know this Proverbs chapter 22 this verse.
हम नीति वचन उसके 22वें अध्याय में इस वचन को जानते हैं.
Train up a child in the way he should go, even when he is old, he will not depart from it.
अंकल वर्स?
Proverbs 22:6.
नीति वचन 22 उसका 6वें वचन में लिखा है, लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा.
So this is God's tremendous promise for our children.
और ये परमेश्वर की एक बहुत अद्भुत प्रतिज्ञा है हमारे बच्चों के लिए.
So when they are children, we should do our best to train them up.
और इसलिए जब वे बच्चे हैं तब हमारी पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम उनको अच्छी तरीके से बढ़ाए.
Teach them God's ways.
हम उनको परमेश्वर के मार्गों की शिक्षा दे.
Obeying God's word than reading the Bible.
बाइबल पढ़ने से भी ज्यादा परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करना हम उन्हें सिखाए.
So God's promise is that when they are old, He will not depart from it.
और फिर परमेश्वर की प्रतिज्ञा ये है कि उनके बुढ़ापे में या जब वो बड़े हो जाएंगे वो उनसे ना हटेंगे.
So having done our best,
और जब हमने हमारे हम जो कुछ कर सकते थे जब हम वो कर चुके,
then we have to trust that God will do His part.
तब हमें इस बात पर विश्वास करना है कि परमेश्वर उसका काम करेगा.
Even if we don't see immediate results, we should not be disheartened.
अगर हम तुरंत हम कोई चीजों को नहीं देखते, कोई परिणाम नहीं देखते, हमें फिर भी निराश नहीं होना है.
There may be some difficult time for some children.
कुछ बच्चों के जीवन में कुछ कठिन समय आ सकते हैं.
We should take it like speed breakers when we drive.
जब हम गाड़ी चलाते हैं तब हम जो रास्ते में जो स्पीड ब्रेकर्स होते हैं हमें उसी समान इसको भी देखना है.
We should trust that God will take care of them and they will not forget what they learned when they were young.
हमें भरोसा करना है कि परमेश्वर अंकल कैन यू रिपीट.
We should trust that God will do His part, and children will not depart from what they learned when they were young.
हमें याद रखना परमेश्वर उसका काम करेगा और जो बच्चे जब वो छोटे थे जब वो जो कुछ सीखे हैं वो उसे नहीं भूलेंगे.
So in summary, what I want to say, do our best in our circumstances.
और सारांश में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम हमारे परिस्थिति में जो सर्वोत्तम कर सकते हैं हमें वो करना है.
And continue to pray for children.
और हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना लगातार करते रहे.
And focus on the internal character than external things.
और बाहरी चीजों से भी ज्यादा उनके अंदरूनी स्वभाव पर ध्यान दे.
Thank you so much, uncle. And यहाँ पे सारे question finish होते हैं. We लोग सच में ये सुने वचन के अनुसार we hope हम लोग आशा करते कि परमेश्वर हमें अनुग्रह देगा ताकि हम ऐसे परिवार को बढ़ा सके. हमारे हमारे जो सहयोगी हमारे पार्टनर पति या पत्नी उनके साथ में हम एक सही में एक सच्चा मसीह जीवन हम जी सके और जो कुछ हमने सीखा है हम ये प्रभु के अनुग्रह से करके एक गॉडली परिवार को हम आगे परमेश्वर की महिमा के लिए बढ़ा सके. हमारे बीच में डेनी भैया है. नाउ डेनी भैया विल शेयर समथिंग. यस डेनी भैया.
या आई वाज रियली ब्लेस्ड बाय व्हाट वी हर्ड.
और जो कुछ हमने सुना मैं उससे बहुत आशीषित हुआ.
Something which I learned in these past years which I was married.
और पिछले कुछ वर्षों में मेरे विवाहित जीवन में मैं जो कुछ चीजें सीखा वो ये थी.
Initially in my life I did not recognize lot of my sins which I had but I did not recognize it.
और मेरे जीवन के शुरुआत में ऐसे कई पाप जो मेरे में थे मैं उनको देख नहीं पाया.
I think because of after only some time we realize that realize lot of things which come out of our hearts.
कुछ समय बाद ही हम ये जानते हम ये देख पाते हैं कि हमारे मन से जो काफी गलत चीजें आती है.
One thing which I realized that I was a very self-righteous person.
एक चीज जो मुझे बाद में पता चली वो ये थी कि मैं खुद को हमेशा धर्मी ठहराने वाला एक व्यक्ति था.
So when I realized that that is one area which slowly God wanted me to work in that area.
और जब मुझे मैंने उस चीज धीरे-धीरे काम करना चाहता था.
The way I realized it is whenever I am corrected or whenever somebody my wife tells me something about what I did wrong, I always want to justify myself.
और इस चीज को मैंने इस प्रकार समझा कि जब कभी कोई मेरे जीवन में सुधार करता है या जब कभी मेरी पत्नी मुझे कोई मेरी गलती दिखाती थी तो मैं हमेशा अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करता था.
So that is our nature. We want to prove that we are better or we are not wrong.
ये हमारा स्वभाव है. हम हमेशा ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ.
So that is one area which By God's grace, God is working in me.
और ये एक क्षेत्र है कि परमेश्वर की अनुग्रह से वो मुझमें काम कर रहा है.
And another area where God has given me light is where I'm unnecessarily using religious words or acting religious.
और दूसरा एक क्षेत्र जो मुझे परमेश्वर ने दिखाया वो ऐसे जगह है जहां मैं जरूरत न होने पर धार्मिक भाषा का इस्तेमाल करता हूं या धार्मिक होने की कोशिश करता हूं।
And that will create lot of distance between husband and wife.
और अगर ऐसा किया जाए तो पति पत्नी में बहुत दूरी आ सकती है।
For example, when it is not necessary, if we start preaching.
उदाहरण के तौर पर जब जरूरत नहीं है तब अगर हम प्रचार करना शुरू कर देंगे तो।
Or we start quoting Bible verses when it is not required.
या जब कोई भी जरूरत नहीं है तब हम अगर बाइबल के वचन एक दूसरे को बताना शुरू कर देंगे तो।
So that becomes a very very boring and very strainful life.
अगर हम ऐसा करते हैं तो वो बहुत ही बोरिंग जीवन होता है और एक तनावपूर्ण जीवन होता है।
So God wants us to be natural and live naturally.
परमेश्वर चाहता है कि हम प्राकृतिक हो और प्राकृतिक तरीके से जीवन बिताए।
I should be able to enjoy and I should be able to laugh and play and do many things, not just speak spiritual things.
मैं मजा उठाना मुझे आना चाहिए, मैं खेल सकता, मुझे खेल आना चाहिए, मैं काफी हंसी मजाक में करना मुझे करना आना चाहिए।
So first of all, I should build a friendship with my wife before I can have a fellowship.
और इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं मेरे पत्नी से पहले मित्रता करूँ सहभागिता से पहले।